Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Athva mantra chal raha tha. Aranyur nihito jat veda garbhi subhrito garbhini bhi दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर महाविष्मद्भिर मनुष्येभिर अग्निः एतद्वैतद् अरण्योर निहितो जात वेदा। अरण्यों दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है जात वेदा अग्नि, किसके समान? तो जैसे गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी, जैसे गर्भिणी अपने गर्भ को सुभृत करती है, पोषित करती है, दिवे दिव ईड्यो और ये उस अग्नि में प्रतिदिन दिव दिव प्रतिदिन दिवे दिवे जो इस अग्नि में हवन करते हैं, जागृवत भी हविष्मत भी, जो जागृत हैं, प्रमाद रहित हैं और जो होम सामग्री से युक्त हैं, कौन है? मनुष्य। मनुष्य भी अर्थात मनुष्य ही, ये छंदों की एक संस्कृत होती छांदस अर्थात वेदों की। तो मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा ये नित्य प्रति ईड्य स्तुति की जाती है अथवा होम किया जाने योग्य है। यह ब्रह्म वही यह तुम हो, एतद्वैतद्। तो यह यही वह ब्रह्म है जिसका तुमने प्रश्न किया था। तो ये मंत्र हम लोग किंचित किए थे, थोड़ा और इस पर विचार करेंगे। मंत्र तो सभी बहुत विचार करने योग्य है। तो एक बात इसमें यह कही गई कि उत्तरारणी और अधः अरणी विद्यमान है, परंतु कल ये बात की थी हम लोगों ने, संधान के बिना अग्नि की उत्पत्ति नहीं होगी। दोनों है पर संधान के बिना नहीं होगी। वैसे ही गुरु और शिष्य विद्यमान है, आखिरी में ये बात हुई थी कि विद्यमान है, कहा हम उनके स्पर्श से जान लेंगे, हम उनको दर्शन करके जान लेंगे इत्यादि, ये सब जो बातें हैं ये वेदांत के अनुसार नहीं है। ये शक्तिपात की बात भी वेदांत विद्या के, ब्रह्म विद्या के अनुसार नहीं है ये। और बाद में जब तंत्र आदि का विचार आया ना, उसके बाद ये आया है। तो उपनिषद में ये सब नहीं है। तो उसके बिना गुरु शिष्य विद्यमान है, पर जब वो तत्वमसी आदि महावाक्य का उपदेश करेंगे और उसके अर्थ का ज्ञान कराएंगे, आप उसके तत्वमसी कह देने से नहीं होगा, उसके अर्थ का ज्ञान जब कराएंगे तब जाके ज्ञानाग्नि की उत्पत्ति होगी, और नहीं तो नहीं होगी, तब ज्ञानाग्नि की उत्पत्ति होगी। तो इसलिए, और कहीं कहें आपकी बिना उपदेश के भी हो गया है तो पूर्व जन्म में उनका संधान हो चुका है, ऐसा एक अनुमान किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रमाणत्व की बात है, चर्चा करेंगे। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो यज्ञ करने वाले हैं एक, और दूसरे कौन है? तो कहा जो योगी जन है दो। तो क्योंकि भाष्यकार भगवान ने ऐसे लिया, और जागृवत भी हविष्मत भी, दो जो बातें ली गई तो वो भी दो ली गई हैं। तो इसमें कहा ऋत्विक भी और योगी भीश्च, ऋत्विकों के द्वारा अर्थात जो यज्ञ करने वाले हैं उनके द्वारा और योगी जनों के द्वारा क्रमशः ये बाह्य देश में अर्थात बाह्य जो यज्ञ करते हैं उसमें, यज्ञ देश में और हृदय देश में इस अग्नि को प्रकट किया जाता है। तो एक बाह्य दृष्टांत दिया और एक आंतर। और यहाँ पूर्व पंक्ति में जो मंत्र की पूर्व पंक्ति है उसमें भी अरणी और गर्भ ऐसे दो दृष्टांत दिए गए, अरणी और गर्भ के दो दृष्टांत यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा बाहर है या परमात्मा अंदर है, ये प्रश्न उठता। दो दो बात ऐसी कही जा रही, वहाँ योगी की भी बात है और कर्मी की भी बात है, धर्मी की, और दूसरे दृष्टांत में अरणी का भी दृष्टांत है। जो बाहर मंथन चलता है और अंदर गर्भिणी का दृष्टांत है जिसके पेट में गर्भ होता है। तो ये दो दो बातें जो कही जा रही हैं, तो इससे प्रश्न ये उठ जाता है कि परमात्मा बाहर है या परमात्मा अंदर है। तो अंदर और बाहर क्या है? यह देश है। देश की कल्पना जब बैठी है तो यह देश है। तो देश है, यह स्थान है। अंदर भी एक स्थान है और बाहर भी एक दूसरा स्थान है, ऐसा हम सोचते हैं। तो निश्चित अपने में ही हम अंदर और बाहर की कल्पना करते हैं, ठीक है। लेकिन किस प्रकार से करते हैं? हम शरीर को बीच में रखकर तब अंदर बाहर बनाते हैं। तो अपने आप को जब हम शरीर मानते हैं तब हम कहते हैं कि अंदर और बाहर। और इसका अंदर और बाहर का भेद कैसे बना? तो कहा एक चर्म दृष्टि है, चाम जो लगा है इस हड्डी मांस चाम की पोटली। तो चाम की पोटली में बहुत सारी गंदगी भरी हुई है और उसको लेकर हम अंदर बाहर की यह कल्पना कर रहे हैं उसमें बैठकर। तो कितने गलत स्थान में बैठ गए। यहाँ श्रुति भगवती कहती हैं कि देखो तुम बहुत गलत स्थान में बैठे हो। इसी कारण से सनातन धर्म की जो पद्धति है उसमें अंदर भी भगवान का ध्यान किया जाता है और बाहर भी। अर्थात बाहर आप किसी भी रूप में परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। उपासना, ध्यान आदि सभी शब्द हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में पर्यायवाची से हो जाते हैं। अभी आप सुन भी रहे थे, श्री महाराज जी कह रहे थे कि भाई तुमने जो गोलक इंद्रियों के बना रखे हैं उससे तुम जागृत और स्वप्न में भेद कर रहे हो। जागृत में इंद्रियां हैं, इंद्रिय अर्थोपलब्धि, जब इंद्रियों के द्वारा विषयों की उपलब्धि होती तब उसे तुम जागृतम जागृत कह देते हो। तो ये भेद हमने कैसे बनाया है? तो परमात्मा आपके अंदर है या बाहर है? तो पहले आप जिसको मैं कह रहे हैं वह कौन है उसको भी तो जानो। तो और किसको देखकर तुम अंदर बाहर का भेद बना रहे हो? एक बात इसमें यह कही कि जो भगवान भाष्यकार ने भी दो ले लिए ना, अच्छा सनातन धर्म की रीति से इसलिए ईश्वर की उपासना अंदर बाहर आप कर सकते हैं, क्योंकि अंदर का भाव और बाहर का भाव यह कोई ठोस तथ्य नहीं है। अंदर बाहर कोई ठोस तथ्य नहीं है, है ना? आप इसको समझ लेना, क्योंकि विज्ञान को समझने से आपको सरलता हो जाती है। तो यह कोई ठोस तथ्य नहीं है, अंदर बाहर एक देश है और दृष्टा जो है इसका वह चैतन्य आत्मा है और इस अंदर बाहर का जो अधिष्ठान है वह ब्रह्म है। तो आप उसको ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्म कैसा है? तो कहा अपरिछिन्न है, अनंत है। तो ऐसा जो ब्रह्म जो अपरिछिन्न है, अनंत है, उसी में हम एक पोटली में चर्म जिसमें आवृत है उसमें बैठकर अंदर बाहर का भेद बना रहे हैं। अनुभूति को थोड़ा प्रत्यक्ष वो होने देना ना? कि इसका इसको हम इतना देहाभिमान को छोड़ नहीं पाते, इसी कारण से हम कुछ समझ भी नहीं पाते हैं। तो दृश्य के अधिष्ठान का चिंतन जब हम करते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ब्रह्म अधिष्ठान है जी, क्योंकि यह दृश्य है, तो दृश्य का के अधिष्ठान का चिंतन करते हैं। तो कैसे करते हैं? अनुमान से करते हैं। तो दृश्य कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और दृश्य में आप अपनी वृत्ति को जितना भी फैलाते हैं और वह दृश्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों में फैला लीजिए, लेकिन उस दृश्य का भी अधिष्ठान, तो दृश्य का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य। तो अनुमान से यह दृश्य भी आपके लिए परोक्ष ही रहता है। देश, देश कहो, स्पष्ट मतलब स्पष्ट होने के लिए बुद्धि में, तो इसको देश कहो, तो वह परोक्ष ही रह जाता है। और जो हम दृष्टा है, जो हम दृष्टा है, हम देश को देखते हैं, तो हम अपने को परिच्छिन्न ही मानते हैं। तो हमेशा दृष्टा होकर हम कहाँ बैठे, कहाँ भीतर बैठे, और ये जो इंद्रियां हैं इनके द्वारा हम देखते हैं। तो इनके द्वारा जब हम देखते हैं तो हम परिच्छिन्न हैं, ऐसा एक भाव रह जाता है, क्योंकि देहाभिमान नहीं छूटता है। तो ये परिच्छिन्नता हमारी, ये सीमितपना चैतन्य का, वह कटता नहीं है। इसलिए शास्त्र ने ये ब्रह्म आपके सामने लाके दिया, लेकिन वहां भी क्या होता है, तो कहा कि वहां वह तत्पदार्थ है और वह अपरिच्छिन्न है, अनंत है। आपको पहले से बताया था कि यहां सब जगह ऐक्य बोध है, तो कहा कि वह अपरिच्छिन्न है। तो वो ये जिस अधिष्ठान में समस्त दृश्य, समस्त देश काल वस्तु, देश एक वस्तु ले रहे हैं क्योंकि यहाँ अंतरदेश और बहिर्देश की बात है, तो जिसमें कल्पित है वह अधिष्ठान, वह तत्पदार्थ है। और जिस दृष्टा चैतन्य के द्वारा हम देखते हैं वह त्वम पदार्थ है। लेकिन एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि चैतन्य और चैतन्य में कोई भेद नहीं होता, चैतन्य और चैतन्य वह निर्विशेष ही रहता है। इसलिए लक्षण से उपलक्षित किया जाता है, एकता जो है वह उपलक्षित किया जाता है। तो वैशिष्ट्याभावात्, वैशिष्ट का अभाव होने के कारण, यद अधिष्ठानम तद दृष्टि, जो अधिष्ठान है वही दृष्टा है वैशिष्ट के अभाव के कारण। और यो वै दृष्टा तद अधिष्ठानम, और जो दृष्टा है वह अधिष्ठान है। बात तो इतनी सी है लेकिन इसको विभिन्न प्रकार से हम समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि उसमें कोई विशेषता नहीं है चैतन्य में, उसको आप परिच्छिन्न नहीं कर सकते एक देश में बांधकर, वह अनंत है। आप आकाश को जैसे परिच्छिन्न नहीं कर सकते, केवल कल्पित आकृति उपाधि खड़ी करके, घट आदि की उपाधि खड़ी करके, और तब आप मानते हैं कि आकाश परिच्छिन्न हो गया, उसको आप नाम देते हैं घटाकाश। और बाहर, तो बाहर महाकाश है, ये मठ में तो कहा मठाकाश है। तो आपने जब मठ बनाया, दीवालें बनाई, तब आकाश को लाकर इसमें डाला, नहीं डाला, टुकड़े आकाश के नहीं हुए। घट बनाया तो घट में आकाश को डाला, नहीं डाला। तो आकाश ज्यों का त्यों अपरिच्छिन्न है, अनंत है। तो उसी प्रकार से वो उतना का उतना बड़ा है, आकाश की भी परिच्छिन्नता सिद्ध की जाती है। इसलिए आकाश एक दृष्टांत है, क्योंकि आपके आपके अनुभूति में आता है और उसमें शब्द का गमन होता है, शब्द गुणक है। लेकिन यहाँ एक दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक में क्या है कि जो अधिष्ठान है वही साक्षी दृष्टा है, और जो दृष्टा है वही अधिष्ठान है। और यह बात आपको वेदांत के सिवा और कोई नहीं बताता है, और कोई दर्शन, कोई मत, कोई मजहब ये बात नहीं बताते। और यह बात समझने के लिए अधिकारी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे, एक और बात कहते हैं कि जैसे अधिकारी की आवश्यकता होती है, अर्थात जो प्रमाण को स्वीकार करे, जैसे हम नेत्र प्रमाण को स्वीकृति देते हैं कि नेत्र से जो दिखता है वो सच्चा, भले आप सूर्य को छोटा सा देखें, भले आप मरुस्थल में जल देखें, लेकिन नेत्र प्रमाण को आप स्वीकृति देते हैं, किंतु वेदांत प्रमाण को आप स्वीकृति नहीं देते। और सिद्ध वस्तु को दिखाता है, अर्थात यहाँ सिद्ध मोक्ष है, मोक्ष होना नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। तो ऐसे सिद्ध वस्तु को दिखाता है यह वेदांत, यह प्रमाण है। तो यहाँ इस मंत्र में तो कहा कि जैसे गर्भिणी गर्भ धारण करती है, वैसे गुरु प्रदत्त जो प्रवचन है वह जिज्ञासु शिष्य हृदय में धारण करे, तब ज्ञान पुत्र का प्राकट्य होगा, तो वह धारण करे। ये वेदांत में ये विशेषता है कि अन्य प्रमाण से या अन्य उपाय से या अन्य साधन से पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार शक्य नहीं है, केवल इसी प्रमाण से शक्य है। इसलिए प्रमाणांतर का निषेध कर देते हैं। ये भी एक मुख्य पक्ष होता है। वेदांत प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण का निषेध कर दिया जाता है। अगर कहें कि हम युक्ति से उसे प्राप्त कर देंगे, तो युक्तियां जिसके सामने नाचती हैं, उपाय जिसके सामने पैदा होते हैं और मरते हैं ना? और साधना, जितनी भी साधनाएं आप करते हैं, वो भी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वह आपका चैतन्य है। और जब उस चैतन्य को आप जान लेते हैं, उस सत्य को आप जान के वहां बैठते हैं, तो आपका आग्रह नहीं रह जाता। भला कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रह जाता। जो जिस प्रकार से साधना करे, जो जिस प्रकार से उपासना करे, जो जिस प्रकार से युक्ति लगाए, लगाने दो, उसको उसमें झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो बातें, वो बाला है, वो छोटे बच्चों की बातें हैं, जिसकी परिपक्व बुद्धि है, जो जिज्ञासु है, वो दूसरी ओर चल पड़ता है। तो ये सभी, क्योंकि ये सभी जो आपका, क्योंकि अहंकार करता है ना, परिच्छिन्न अहम साधना करता है, परिच्छिन्न अहम जप करता है, ध्यान करता है, करे और बाद में भी करता रहता है, तत्व बोध होने के पश्चात भी। तो उसमें वह जो भी साधन पक्ष लाता है, ध्यान करता है, उपासना करता है, युक्ति लगाता है, आप बहुत देखेंगे आजकल युक्ति तर्क से सत्य को सिद्ध करते हैं, लेकिन सत्य का ज्ञान होना कठिन होता है उनके लिए भी। तो वो जिस भी प्रकार से करें, लेकिन ये सब क्या है, प्रतीति है। उस अनंत अधिष्ठान चैतन्य में, ब्रह्म चैतन्य में ये प्रतीत होते हैं कभी और कभी नहीं होते हैं। वह कौन है जिसको ये प्रतीत होते हैं और कभी नहीं प्रतीत होते हैं? वह आपका आत्मदेव है, आपका चैतन्य है, वह अनंत है, अपरिच्छिन्न है। और यह साधन साध्य नहीं है, यह युक्ति साध्य नहीं है। हम अपने मन से इसको समझ लेंगे कैसे, तो कहा हम खूब समाधि लगाएंगे अथवा धर्मानुष्ठान करेंगे, हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं, ये सब जो आप लोग सुनाते हो ना, बहुत सुनते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन उसका भी आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं कि दुखी होके रोए कि हमें ऐसा कह दिया। तो बोलते हैं कि आप ये सब जो सुनाते हो ना, कल ही एक लड़के ने फोन किया था, आधे घंटे तक वो हमसे बहस ये किया कि आप लोग जो हो वो मुफ्त की रोटी खाते हो, मेहनत करके नहीं खाते हो, मुफ्त की रोटी खाते हो और अंधसंत कुछ भी सबको बोलते रहते हो। तो बहुत युक्ति तर्क से, तो उसको उत्तर युक्ति तर्क से देना पड़ता है। या तो कहो कि पशु पक्षी भी मुफ्त की रोटी खाते हैं, या तो कहो कि पशु पक्षी भी मेहनत की रोटी खाते हैं। तो कहा कि आप लोग जो है वो इस प्रकार से निकम्मे लोग हो और मेहनत भी नहीं करते हो और ऐसे ही रोटी खाते रहते हो, और हम देखो इतनी कमाई करते हैं, इतना मेहनत से परिश्रम से हम कमाते हैं। तो उनके पास, और वो युक्ति उनकी ये होती है, वो बोलते हैं हम मेहनत से कमाते हैं, हम दान करते हैं, हम लोगों के साथ भला करते हैं, भले करते हो नहीं करते हो ये नहीं पता है, पर वो थोक कर ये कहते हैं कि हम भलाई के काम करते हैं। और क्या है, उसी में भगवान ने हमें मनुष्य का देह दिया, तो भगवान इससे खुश होते हैं। और आप लोगों को देख के तो भगवान अपने कर्म फोड़ते हो कि तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो, हाथ पांव दिए भगवान ने उनको बांधे बैठे हो, कुछ जीवन में कर्तव्य का निर्वाह भी नहीं किया। तो कहा कि देखो भाई, ये सब जो युक्तियां तर्क हैं, अपने मन से जो विचार है और सबका जो आप विधान करते हैं, निषेध करते हैं, शास्त्रों में भी खूब है, विधान किया जाता है, निषेध किया जाता है, आपके मन में भी विधान होता है, निषेध होता है, उस सबका साक्षी कौन है? उस सबका साक्षी कौन है? हम उसका विचार करते हैं, हम चैतन्य का विचार करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रतीतियां आती हैं, जाती हैं, इससे वह बहुत देख के, वो कबीर दास बोलते हैं, का देखूं कछु थिर न रहे, बहुत देख के और तब वह उससे उसका पेट भर जाता है, अब कुछ और देखना नहीं। नास्ति अकृता कृतेन परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से जो लोक बनाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, वह मिट जाएगा। नास्ति अकृता कृतेन, एक छोटे से जीवन को जो स्वप्नवत है उसको हम स्थिर और अचल मान रहे हैं, ये हमारी एक गड़बड़ी है। इसलिए जो साक्षी है उसको देखो। आगे कहते हैं दिवे दिवे इद्यः, दिवे दिवे, तो इसमें जैसे केनोपनिषद में प्रतिबोध विदितम मतम, बहुत गंभीर मंत्र है वो, वहां पर प्रतिबोध विदितम मतम, वहां भी महावाक्य का ही उपदेश है केन में, केनोपनिषद में, तो उसी प्रकार यहाँ दिवे दिवे अहनी अहनी, भाष्यकार भगवान कह रहे हैं अहनी अहनी इज्यः स्तुत्यः, प्रतिदिन उसकी उसका यजन करना चाहिए, प्रतिदिन उसकी स्तुति करना चाहिए। तो दिव दिव से अर्थ यहाँ क्या है? तो वहाँ क्या है? अथर्व वेद में है, यहाँ ऋग्वेद में है। तो दिव से अर्थ होता है प्रकाश ना, तो सब वृत्तियों के प्रकाशक, दिव माने प्रकाशक तुम हो, चाहे शब्दाकार वृत्ति आए और जाए, अथवा रूपाकार वृत्ति आए जाए, स्पर्शाकार वृत्ति आए जाए, लेकिन आप उनको देखते हैं और आप उनको प्रकाशित करते हैं। तो जैसे अग्निहोत्री प्रतिदिन यज्ञ करता है और उस अग्नि में हवन करता है, उस अग्नि में अर्थात प्रकाश में, उसी प्रकार से आप अपनी उस सामर्थ्य को जगाइए कि आप इस संपूर्ण शब्द स्पर्श रूप रस गंध को उस ज्ञान की अग्नि में, अर्थात आप जो ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसा नहीं समझना कि कोई ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी और जलाएगी सबको, आप जो ज्ञान स्वरूप हैं, उस अपनी महिमा को, उस अपने स्वरूप को, श्रुति कहती है स्वे महिमनी प्रतिष्ठितम, वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है, तो उस अपनी प्रतिष्ठा का जैसे ही आप स्मरण करते हैं, तो उस अपनी महिमा का, अपने ज्ञान का स्मरण करते ही, जो इसके ही द्वारा सब रश्मियों के जैसे फैल रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, वह उसमें हवन हो जाएगा, उसमें आहुति दे दी जाएगी, वह उसमें भस्म हो जाएगा, उस अग्नि में भस्म होने के बाद भले बात दिखे तो बाधित ही भासेगा, भले भासे तो बाधित ही भासेगा। भस्म जगत को नहीं करना है, भस्म उसकी सत्यत्व बुद्धि जो आपके अंदर बैठी हुई है उसको ज्ञानाग्नि में भस्म करना है। तो आपकी बुद्धि में जो ये बैठा हुआ है उसको इस प्रकाश में, इस अग्नि में भस्म करना है, जो सबको देखता रहता है, प्रतिबोध विदितम मतम, जो प्रत्येक बोध के जितनी वृत्ति उठती है, जितना प्रकाश उठता है, सब में यह मौजूद ही है, यह बैठा ही रहता है, यह ज्ञान होता ही है, इसे कहीं बनाना नहीं है, खोजने जाना नहीं है, आप श्रवण करें और इस ज्ञान को जागने दें। ये ज्ञान जो आपके अंदर सो रहा है, जैसे भगवान सोते रहते हैं शेषशायी, तो इसको जागने दें। तो दिवे 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 अहनी अहनी जो यहाँ पर कह रहे हैं, और कहा कि प्रत्येक वृत्ति जो उठती है वह ज्ञान स्वरूप है, यह ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप से ज्ञान लेकर ही आप इसको देखते हैं। तो दिवे दिवे वृत्तौ वृत्तौ, प्रकाशे प्रकाशे, प्रतीतौ प्रतीतौ, प्रत्येक प्रतीति में, प्रत्येक प्रकाश में, प्रत्येक वृत्ति में, प्रत्येक दिव में, प्रकाश में। तो उसको आप हविष मत भी और सावधान होकर हवन करें, जाग्रवत भी, जागते रहो, जागते रहो, इस ज्ञान में जागते रहो, सोना नहीं है, सावधान। महाराज जी कहते हैं साधु सावधान कहते थे ना, तो कहा कि सावधान, सोना नहीं है। हविष मत भी, तो हविष मत भी संपूर्ण दृश्य प्रपंच का इस ज्ञान अग्नि में, इसमें भोग लगा दो, इसमें उसको भोग लगा दो, अर्थात इसको हवन कर दो, अग्नि में हवन कर दो। हविष मत भी इस ज्ञान में आ, और किसके द्वारा? मनुष्य भी, आप मनुष्य हैं। यदि आप मनुष्य हैं तो आप विचारशील हैं, विचारशील होकर मनुष्य की, मनुष्यता का यही सबसे उत्कृष्ट सदुपयोग है। इससे उत्कृष्ट और कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए उस बालक से हमने कहा कि पशु पक्षी भी बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। आप लोग तो अभी सोए होते हैं रजाई ओढ़ के, उसमें एसी चालू करके, कंबल ओढ़ के, तब वो चू 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 करके पशु पक्षी, ये कबूतर, ये कौआ, ये चिड़िया, वो आ जाते हैं और दाना ढूंढने लगते हैं पेट भरने के लिए। बहवा इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, जैसे भिक्षुचर्या ये पक्षी करते हैं, उसी प्रकार से विहंग, विहंग अर्थात ये सन्यासी, ये भी भिक्षा मांगकर खा लेते हैं, भिक्षुचर्याम चरंती। ऐसा एक आश्रम बनाया हमारे यहाँ वैदिक पद्धति में, जो ज्ञान के अनुरूप हो, अर्थात ज्ञान होने में जिसमें सरलता हो जाए। बाकी ज्ञान तो कहीं भी हो सकता है। तो जो विचारशील है मनुष्य, मनुष्य भी जो विचारशील है मनुष्य है, यदि इसमें कहा पूर्व के मंत्र से मिला लो कि यदि दृश्य से आप कुछ भी बचाकर रख लोगे। कहा महाराज ये तो नहीं चलता। एक बार महाराज जी के साथ हम लोग आखिरी बार जब मुंबई आ रहे थे तो रास्ते में बातचीत हो रही थी। महाराज जी तो एरोप्लेन से आए थे और मुख्य सेवक, और हम लोग जो गौण सेवक थे वो ट्रेन से आए थे।